नामक जो शास्त्र है उस प्रवचन सार शास्त्र में जो गुरुदेव ने प्रवचन किए थे उसका दिव्य ध्वनि सार नामक जो शास्त्र अपने पास उपलब्ध है उसके पेज नंबर 29 से हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, हे तीर्थंकर आदि परमेष्टि भगवान, मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर मंडप में पधारो पधारो। यहाँ कुंदकुंदाचार्य पंचपरमेष्ठियों का सम्मान करते हैं। जिस तरह संभावना करता हूँ, संभावना यानी आदर, संभावना यानी पॉसिबिलिटी नहीं, मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथता, ये निर्ग्रथता हो गया है, ग्रह के ऊपर रफार चाहिए, निर्ग्रंथता। थोड़ा सा ये बीच वाली पीछे हटा दो और थोड़े आगे आना। गाड़ी थोड़ी थोड़ी आ जाएगा, हाँ बस लेकिन आप थोड़ा सा आगे आना। देखो क्या कह रहे हैं, ये निर्ग्रंथता जो है ना, निर्ग्रंथ तो निर के बाद में तो ग्रह के ऊपर रफार चाहिए, निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव यानी आनंदमय प्रसंग है, उसे उचित मंगलाचरण भूत जो कृति कर्म शास्त्रोपदिष्ट वंदनोच्चार द्वारा संभावना करता हूँ। मेरी चारित्र दशा का आनंदमय प्रसंग है। जैसे संसार में अंतिम अथवा पहला विवाह हो तो बहुत आनंद मानता है, वैसे ही यहाँ भी आनंदमय, ये आनंदमय हो गया। आ करना अ का आनंदमय प्रसंग है। आचार्य कहते हैं कि मेरी चारित्र दशा अंतर में है। 28 मूल गुण पालना वह चारित्र नहीं है, मेरा सत्व मेरे अंतर में है, उससे मिलने के लिए मैंने मोक्ष के मंडप की रचना की है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी यही मेरा मांगलिक है, ऐसे मंगल और उचित स्तुति द्वारा सम्मान करता हूँ, जिसमें नित्य नैमित्तिक क्रिया का वर्णन है। ऐसे कृति कर्म शास्त्र द्वारा उपदेश दिए हुए स्तुति वचन से सत्कार करता हूँ, तथा वचन उच्चारण द्वारा आराधन करता हूँ। यहाँ ये ऊपर जो शब्द आया था कृति कर्म, तो ये कृति कर्म शास्त्रों उपदिष्ट यानी शास्त्रों में उपदिष्ट यानी जैसा उपदेश दिया है, तो वो शास्त्र में क्या लिखा है, तो कहते हैं जिसमें नित्य नैमित्त क्रिया का वर्णन है, ऐसे कृति कर्म शास्त्र द्वारा उपदेश देते हैं। आगे जैसे मेहमानों को लेने जाते हैं और पधारो पधारो कहते हैं, उनमें भी यदि चक्रवर्ती आए तो उसे राजा लेने जाते हैं और पधारो पधारो कहकर सम्मान करते हैं। ऐसे ही भगवती जिन दीक्षारूप चरित्र आराधना के स्वयंवर मंडप में हे तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्ठी पधारो पधारो। देखो कितना मतलब अपने लौकिक की जो बातें होती है उसके साथ तुलना कर करके यहाँ गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है कि जब यह जीव अपने स्वरूप में एकाग्र होना चाहता है और कहते हैं कि बस मुझे अभी तो मोक्ष प्राप्त करना ही है, ये मोक्ष मंडप लगा हुआ है। देखो अगर आपने युगल किशोर जी की सिद्ध पूजन जो पढ़ी होगी तो यही भाव उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया, बहुत सुंदर है वो अभिलेखक उनकी सिद्ध पूजन, उसकी भाषा बहुत गरिष्ठ है, समझने में बहुत कसरत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार ध्यान में आ जाए तो बहुत बढ़िया, वो काव्य कहो या स्तुति कहो या भाव जो है बहुत ही उत्कृष्ट है। तो ये जो है ना क्या कह रहे, देखो कि मेरे सत्व मेरे अंदर में है, जिस उससे मिलने के लिए मैंने मोक्ष के मंडप की रचना की है, यानी इसलिए वे सारे जो तीर्थंकर है या जो पंच परमेष्ठी है उन्हें वो उनको वो पधारो पधारो ऐसा करके उनको बुलाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। आगे क्या क्या, हाँ हाँ बिल्कुल हो गया। ऐसी भावना भा रहे हैं, वो तो नहीं जानते होंगे कि पंचम काल में उन्हें मोक्ष नहीं होने वाला है, ये स्वयं ही अपने को सिखाते हैं ना। लेकिन ये तो ऐसा है जब भक्ति करता है कोई जीव तो भक्तिवश कुछ भी कह देता है, जैसे हम कहते हैं ना हम तो भगवान महावीर की संतान है, जिनवानी हमारी माता है, ऐसा कहते हैं तो क्या ऐसा हो सकेगा जिनवानी हमारी माता। और अभी आप तो जानते हो कि भगवान महावीर तो बाल ब्रह्मचारी थे, उकाई के हम उनके संतान, लेकिन भक्तिवश ऐसा कह देते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि तू सारे जग का उद्धार करने वाला है, यानी उद्धार करने वाला कहकर उसके पीछे जाके नहीं मेरा उद्धार करो उद्धार करो ऐसा नहीं, वो तो जानते हैं कि जो जीव स्वयं अपने स्वरूप का स्वरूप में एकाग्र होगा अपना स्वयं का स्वयं उद्धार करेगा, तो उसको वो सामने वाले भगवान के ऊपर इस तरह से आरोप जरूर करेगा। प्रेम वश है वो, यानी उनके प्रति जो आदर है, राग है, उसके कारण वो कर रहे हैं। अब आगे जितने अरिहंत सिद्ध, चौथी लाइन लास्ट पैराग्राफ, जितने अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु जो वर्तमान में वर्तते हैं और पूर्व में हो गए हैं, उन सभी को काल गोचर कहते हैं, करते हैं। जैसे विवाह में कोई सगा संबंधी नहीं आ सके तो उनका नाम लेकर याद करते हैं किंतु उनकी कमी नहीं आने देते, वैसे ही 20 विहरमान थे, वो विरहमान हुए। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, विहरमान विहरमान होना चाहिए, उन्होंने विरहमान लिखा है, यानी विरह यानी जिनका विरह होगा वो, और विहरमान यानी जो अभी वर्तते हैं, वर्तमान में जो अभी है। तो वैसे ही 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान यहाँ उपस्थित नहीं है, फिर भी उनका तथा अन्य का नाम लेकर याद करके सभी को उपस्थित करते हैं। देखो मोक्ष लक्ष्मी के भनकार की दशा बताते हैं। अभी ये अभी आपका जो प्रश्न था ना, उसका उत्तर आ गया। क्या कहते हैं? मोक्ष लक्ष्मी के भनकार की दशा बताते हैं, यानी जिसे मोक्ष प्राप्त होने वाला हो तो उस जीव के कैसी अवस्था होगी, कैसे उनके मन में कैसे विचार आते होंगे और कितना उच्च प्रकार का उनका मंद राग भी होगा। अभी यहाँ एक थोड़ी सी तब्दीली है कि भणकार की और दशा, ये दो शब्द में अंतर चाहिए, कि दशा हो गया, वो की और दशा में अंतर चाहिए। जैसे विवाह में प्रीति भोज करता है, वैसे ही यहाँ चारित्र के आनंद के भोजन का स्वाद वर्तता है। अतीन्द्रिय आनंद का धारावाही अनुभव होना उसे चारित्र कहते हैं। चारित्र की परिभाषा दी है क्या डॉक्टर साहब? क्या बताया? अतीन्द्रिय आनंद की धारावाही अनुभव होना। तो जब ये सात्विक अनुष्ठान में मुनिराज होंगे तो उनका अनुभव चल रहा है, और छठे में आने के बाद अतीन्द्रिय आनंद होगा क्या? नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। क्या कहती है आप? होता है। मम्मी आप क्या कहती है? छठे गुणस्थान में वो तो सातवें में सिद्धोपयोग में होगा, जब होगा ना तो छठे में होगा। हाँ क्या कहती है आप? होगा क्या? हो सकता है। अच्छा शुद्ध पढ़ने देखो देखो यहाँ क्या है? हाँ सर। फर्क कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह तीन कषाय चोपड़ी का अभाव है। अब बहुत आपको डिटेल में देखना हो तो छठे गुण स्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय है और सातवें में मंद उदय है, उतना थोड़ा सा वो अनुभव, मतलब अतीन्द्रिय आनंद में मामूली सा फर्क होगा, लेकिन ऐसा द्रव्यान योग की अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा कहने में आएगा। बात तो ऐसी है कि उनमें जो तीन कषाय चौकड़ी जो आकुलता रूप कषाय होते हैं ना, वो नहीं है वहाँ। तो जितनी आकुलता नहीं है उतनी निराकुलता है, और उनके तो स्व का अनुभव, इसलिए वह तो जो आनंद होगा वह तो अतीन्द्रिय आनंद होगा। ये लौकिक पंचेन्द्रिय के विषयों के द्वारा जो हम आनंद मानते हैं वो तो आनंद है ही नहीं, वो तो आनंदाभास है समझो। उनकी तो उनके कोई बात ही नहीं, ये जो अपने स्वरूप का जो उनको रस उन्होंने जो चखा है उसका जो उन्हें आनंद आता है वो छठे में रहे या सातवें में रहे। अगर छठे में हम नहीं मानते हैं तो मुनि पद से वो भ्रष्ट हो जाएंगे। तो छठा गुणस्थान भी मुनि का कहा है ना, तो मुनि का पद कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है नलिन भाई? आगे किधर? अच्छा अरे इधर सर्टिफिकेट लेते हैं क्या झट से? बराबर है, दोनों अपेक्षा है। देखो देखो मुनि की अवस्था वो तो परमात्मा हुए ना, उस अपेक्षा से 12 तक कहो तब भी गलत नहीं है और 14 तक कहो तब भी गलत नहीं है। ख्याल में तो उनको तो महामुनि की पदवी देते हैं, लेकिन वैसे परमात्मा अंतरात्मा और बहिरात्मा इस अपेक्षा से आप देखो तब भी वह 12 तक कहो, कोई ऐसा है हमें अपेक्षा ख्याल में रहे तो बोलने में कोई तकरार नहीं। अब क्या कह रहे देखो, यहाँ ये कह रहे हैं कि छठे गुणस्थान में भी वह मुनि दशा है तो छठे गुणस्थान में भी उन्हें अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है। अब देखो आप जो कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग में अतीन्द्रिय आनंद की विशेष अनुभूति होगी, तो मैंने बताया ना, लेकिन यहाँ क्या है, वो बुद्धिपूर्वक कषाय में जुड़े हैं ना, जुड़े इन देंस वो भी उनके ज्ञान में आ रहा है, और वहाँ तो है लेकिन अबुद्धिपूर्वक है, वहाँ उनका अधिक कॉन्सेंट्रेशन सिद्धोपयोग में स्व में है। हाँ तो इसलिए आप, मैंने ये भी बताया ना, तीव्र उदय और मंद उदय उसकी अपेक्षा। अभी बात तो ऐसी है कि भाई वो तो जानते हैं कि ये राग जो आ रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं है, इतना तो उनके ज्ञान में आएगा कि नहीं, जब राग आ रहा है 28 मूल वन पालन करने का जो राग है, तीर्थंकर आदि जो इनको वंदना करने का जो राग है, वह राग लिखने का जो राग है वो तो उनको ज्ञान में आएगा कि नहीं, तो वो ऐसा मानेंगे अरे मैं यहाँ तक आया हूँ और मैं अभी ये क्या कर रहा हूँ। बेन श्रीबेन बोलते हैं ना, तेरे आमे कहाँ विदेश में आवीने पढ़िया, आ अमारो स्वदेश नथी, आपने पढ़ा है ना उनके रचनामृत वगैरह, तो कहते हैं कि ये जो है ना विदेश है, राग वगैरह जो है वो भले प्रशस्त राग हो उत्तम राग हो फिर भी वह मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, वह जो राग आ रहे हैं उनके भी वे ज्ञाता है, उनकी तरता थोड़ी है, तो उनको तो अपने स्वरूप में जाना ही अच्छा लगेगा सुहाएगा। अब जिस अपेक्षा से आप देखो कि भाई आप कहो कि फिर वहां क्यों नहीं रुकते, अतीन्द्रिय आनंद है ना, लेकिन उससे भी अधिक और ऊपर चढ़ने की तमन्ना होगी कि नहीं। अभी आप, मैं आपसे ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि अभी हम यहाँ सब लोग रोजाना मिलते हैं तो अपना उद्देश्य क्या है, मिनिमम सम्यक दर्शन होना चाहिए मिनिमम है, और अपने ही घर में और अन्य लोग हैं उनके क्या है। हम तो कहते हैं अरे रोज हम आते हैं और हमें क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ऐसे अपने अंदर से होता है ना, उनको तो कुछ नहीं लगता है, ठीक है जाते हैं जाने दो, अभी चाय को हट करते हैं जाने, अपने को खाना मिलता है ना दो टाइम, चिंता नहीं करने की, घर के लोग ऐसा मानते क्यों बहन, और हमें कैसा लगता है, अरे हम यहाँ रोजाना आते हैं जाने आने में इतना टाइम जाता है इधर एक घंटा है, लेकिन अभी तक मुझे क्यों नहीं समय दर्शन हो रहा है, तो मेरे प्रयत्न कुछ करना चाहिए ऐसा लगता है ना। अभी तो हम ये एकदम लोअर लेवल में है, हमें भी लगता है कि हम अच्छे जगह पर जाए, अच्छे स्थिति में जाए, दशा में जाए, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, वो नेचुरल है। लेकिन ऐसा आप जो मानेंगे कि भाई उसमें उसमें तफावत है, तो वैसा मामूली सी तफावत भी है नहीं, ऐसी नहीं बात है, लेकिन वो कह नहीं पा सकेंगे, कहने भी तो नहीं आएगा। देखो अतीन्द्रिय आनंद का धारावाही अनुभव होना उसे चारित्र कहते हैं, हमें प्रीति भोज वर्तता है ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। देखो आचार्य भगवान राग का मैल निकालकर परमानंद दशा को वर्णन करने के लिए निकले हैं। क्या कहा यहाँ, ये जो भगवान आचार्य भगवान राग का मैल निकालकर, ये राग जो भी है तो उन्हें तो प्रशस्त राग ही होगा, शुभ राग ही होगा, मुनि दशा में कभी अशुभोपयोग होता ही नहीं, ख्याल में आया। और जिनके अशुभोपयोग है आगे समझना, हा? आप तो समझदार हो, तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, राग का मैल, उसको मैल बता दिया, उसको निकाल कर परमानंद दशा को वरण करने के लिए निकले हैं। अज्ञानी चारित्र को लोहे के चने चबाने जैसा दुख देने वाला मानता है। अरे कितना कठिन, तुम इतनी बात करते हो ना आत्मा 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 की बात, जरा करके दिखाओ रस्ते पे बिना चप्पल के, वो कितना दुख उठाते हैं। ऐसा अज्ञानी, अपनी तुम्हारी बात है, अज्ञानी क्या कहते हैं, अज्ञानी चारित्र को लोहे के चने चबाने जैसा दुख देने वाला मानता है। चारित्र को दुख देने वाला मानता है, वास्तविक चारित्र क्या है, वह तो अतीन्द्रिय सुख को प्रदान करने वाला, ऐसा अंतरंग में जो स्थिरता है, ऐसा जो चारित्र है, किंतु उसको वो चारित्र नहीं मानता। और यह ये कहते हैं कि चारित्र तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन देने वाला है। अब क्या कहते हैं, किंतु दुख को देने वाला सुख नहीं दे सकता, इसलिए अज्ञानी का माना हुआ चारित्र यह संसार का कारण है। ज्ञानी का चारित्र ही सुखदाता है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी एकाग्रता चारित्र है। जैसे गुड़ की बड़ी भेली में से थोड़ा गुड़ निकालते हैं, वैसे ही आत्मा में आनंद भरा हुआ है, उसमें एकाग्रता होने पर जो आनंद निकलता है वह चारित्र है। मुनियों को नग्न रहना पड़ता है, देखो अभी यहाँ पर भी बताया, मैं ही बताता हूँ, ऐसा नहीं, पुस्तक से पढ़ो क्या कहते हैं, मुनियों को नग्न रहना पड़ता है, नंगे पैर चलना पड़ता है, इस प्रकार कष्ट रूप मुनिपना माने यह तो महाभूल हुई। ये तो अन्य अज्ञानी माने तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने मुनि दशा प्राप्त की है, ली है राधे प्राप्त करी थी, मुनि दशा ली है, वो ऐसा कहते कि तुम क्या बात करते हो, हमारे संग में आके दाखिल हो जाओ फिर समझेगा तुमको दाल रोटी के भाव। यानी क्या कि हम इतना कष्ट करके यहाँ ऐसे खड़े हैं, तो वो तो सुख रूप नहीं मान रहे, वो स्वयं ही दुख को देने वाला ऐसा मान रहे। क्या कहते हैं, देखो यह तो परम आनंदमय मंगल दशा है, जिसमें आत्मा का सहजानंद स्वभाव जागृत हुआ है। जैसे विवाह करने जाए तो सब श्रृंगार सजा कर जाता है, वैसे ही आचार्य राग का मैल निकाल कर पूर्णानंद को वरण करने निकले हैं। अप्रतिहत भाव से परमानंद दशा, न के ऊपर अनुस्वार चाहिए, परमानंद दशा हुआ है, अप्रतिहत भाव से परमानंद दशा को वरण करने के लिए निकले हैं। अप्रतिहत भाव यानी जैसा ऐसा उग्र पुरुषार्थ किया है कि वहां से पीछे नहीं फिरे, यानी खंडित न हो जाए, ऐसे प्रतिहत भाव यानी कायम रहने वाला अखंड ऐसा जो परिणाम है, अप्रतिहत यानी कायम रहने वाला और प्रतिहत यानी खंडन होने वाला, तो अप्रतिहत भाव से परमानंद दशा को वरण करने निकले हैं। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, ये मूल बात है। क्या कहा, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, सहजानंद आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, किंतु पुण्य का राग लाने वाला नहीं। देहादि की क्रिया देह के कारण होती है, किंतु मेरे कारण नहीं, ऐसे ज्ञाता मात्र स्वभाव के भान में उग्रता करके स्थिर हुए हैं, वे चारित्रवंत हैं। अपने स्वरूप में झुकना वह अद्वैत नमस्कार है। उसमें पंच परमेश्वरी की तीव्र भक्ति निमित्त है। तो यहाँ निमित्त है कहाँ, तो कोई भोला जो ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं अपन भक्ति करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, भक्ति करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन वो तो निमित्त है कह रहे हैं। और निमित्त की निमित्त का स्वरूप ख्याल में नहीं होने से वो भटक जाता है, ऐसा शास्त्र में वाक्य पढ़कर। देखो अब क्या कहते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो पहले तो ये बताया कि द्वैत और अद्वैत क्या है, ये हमें समझना चाहिए। द्वैत यानी दो पना और अद्वैत यानी एक में एक पना। तो यहाँ क्या कहते हैं, अपने स्वरूप में झुकना वह अद्वैत नमस्कार है। देखो नमस्कार जब हम करते हैं लौकिक में तो दो व्यक्ति होने चाहिए, एक जिनको नमस्कार किया जाता है और एक वह जो नमस्कार करता है, तो वह दो पना है ना, दो जने हैं। वैसे यहाँ कहते हैं कि अपने स्वरूप में झुकना वह अद्वैत क्या है, नमस्कार। नमस्कार यानी नमना, झुकना किसमें, स्वयं ही स्वयं में झुकता है। ये तो बताने के लिए ऐसा दो प्रकार बताने पड़ेंगे कि स्वयं स्वयं को स्वयं में झुकता है, लेकिन वैसे दो जने नहीं है कि एक स्वयं जो झुकने वाला एक अलग है और जिसके सामने झुकना है वह अलग है। ये तो कथन में तो ऐसा ही कहेंगे कि भाई ये अपने अंदर झुकता है, यानी ऐसा कोई है एक अंदर बैठा हुआ अलग है और एक बाहर वाला अलग है, ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन कथन में तो ऐसा ही आएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, अपने स्वरूप में झुकना यानी अपने स्वरूप का अनुभव करना वह अद्वैत है। और उसमें क्या है, पंच परमेश्वरी की तीव्र भक्ति निमित्त है। अब इस प्रकार अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम तथा वंदनोच्चार द्वारा प्रवर्तते, द्वैत है ना, वो द्वैत करना चाहिए। द्वैत द्वारा मैं वंदन करने वाला हूँ और पंच परमेश्वरी वंदन करने योग्य है। इस प्रकार प्रणाम और वचन द्वारा द्वैत, फिर यहाँ भी द्वेष हुआ है, वो द्वेष करना दो पना वर्तता है। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं स्वयं नमस्कार करने वाला हूँ और नमस्कार करने योग्य ऐसे पंच परमेश्वरी है, वहां तो द्वैत आ गया, द्वैत पना हो गया। और स्वयं के अंदर स्वरूप में एकाग्र हो जाना वह अद्वैत नमस्कार। पंच परमेश्वरी व्यवहार से ध्येय है और ध्यान करने वाला स्वयं है, वह की ओर झुकने पर ऐसा भेद मिट जाता है। मैं वंदन करने वाला हूँ और पंच परमेश्वरी वंद्य है, वंद्य यानी जिनको जो वंदन करने योग्य है उन्हें वंद्य कहते हैं। तो क्या कहा, मैं वंदन करने वाला हूँ और पंच परमेश्वरी वंद्य है, ऐसा भेद मिट गया है। यहाँ पंच परमेश्वरी में सच्चे साधु आ गए, इसमें आनंद कंद में झूलने वाले पंच परमेश्वरी में शामिल और पंच परमेश्वरी पद को लेने वाले साधु सभी आ जाते हैं। पर की तरफ उग्र भाव हुआ, इसलिए स्वभाव भाव हुआ और स्वभाव तरफ अद्वैत हुआ, यह निमित्त का कथन है। अपने स्वरूप में झुकना ढलना यह अद्वैत नमस्कार है। स्वभाव में आह्लाद यानी आनंद आने पर द्वैत, ये फिर द्वैत हुआ है, द्वैत टूटकर अद्वैत अनुभव होता है। यहाँ पर भी दो बार द्वैत द्वैत हुआ है, वहां द्वैत कर गए। ये बात समझ में आई ना? हाँ नहीं आई, क्या नहीं आई प्रतिपदा, ही समझ में आई ना बात, बिना बिना आप कुछ समझते हैं? हाँ नहीं समझता हो तो पूछना, क्योंकि आज आप टेस्ट लेने को आई है ना। हाँ ओके, तो मेरे को जो समझेगा मैं बैठूंगी, मेरे को पता नहीं प्रवचन सार आसान है या नियम सार आसान है। मैंने कहा दोनों आसान है, क्योंकि शास्त्र किसके लिए लिखे है, परमात्मा के लिए क्या मुनियों के लिए? अरे वो तो हमारे जैसे के लिए, हाँ जिनको आगे चलकर परमात्मा बनना है उनके लिए है ना ये।
क्षण है, सब कोई डिफिकल्ट है नहीं। सारा सारा जो आचार्य भगवान ने जो बातें बताई है वो तो हमारे जैसे उनके लिए समझाने के लिए समझने के लिए। पंच परमेश्वरी के प्रति अत्यंत आराध्य भाव के कारण, आराध्य भाव यानी एक जन कोई भी जोर से नहीं बोलते तो हाँ पूज्य हाँ पंच परमेश्वरी के जिनकी आराधना की जाती है ऐसे परिणाम वह आराध्य भाव। पंच परमेश्वरी के प्रति अत्यंत आराध्य भाव के कारण आराध्य यानी जिनकी आराधना करनी चाहिए ऐसे पंच परमेश्वरी भगवंतों को, और आराधक यानी जो आराधना करता है वह आराधक ऐसे स्वयं के भेद व्यापार विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इस नमस्कार में स्वसन्मुख लीनता रूप अद्वैत प्रवर्तता है, यानी जब ऐसे परमेश्वर
जो कि नमस्कार में प्रणाम और वंदनोच्चार दोनों समाहित होने से उसमें द्वैत कहा है, फिर भी तीव्र भक्ति भाव से स्वपर का भेद विलीन हो जाने की अपेक्षा से तो उसमें अद्वैत प्रवर्तता है, भगवान के प्रति विकल्प वर्तता है, इसलिए अद्वैत वर्तता है ऐसा नहीं। ये क्यों बताया ऐसा? ज्योत्सनाबेन के सिर पे ये आ गया, क्या बोलते हैं उसको? हाँ नहीं नहीं हाँ मिथ्या दृष्टि तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि के लिए बात होगी। अरे अपने लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जिसको अद्वैत होगा उसको द्वैत होगा। अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा, मैं कुछ दूसरा बताना चाहता था, आपने नया प्रश्न उठाया, बहुत बढ़िया किया। आपका कहना ये सारी बातें मुनियों की अपेक्षा से है ना, तो ये मुनि जिस प्रकार से अद्वैत नमस्कार यानी अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं तो उनके लिए अद्वैत नमस्कार। अब साक्षात अपने दूसरी भाषा में कहो तो उनके तो निश्चय से नमस्कार है। किसको मुनि किसको नमस्कार करते? निश्चय से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जो अपने स्वरूप का अनुभव है उसको साचा नमस्कार कहा, निश्चय नमस्कार। अब ऐसे जिन्होंने अपने स्वरूप को जाना है, पहचाना है, उसी में स्थिरता धारण की है, ऐसे कोई भी सम्यक दृष्टि होगा, यानी चौथे पांचवे या छठे सातवें छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज, ये जब अब पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं तो उनका वह व्यवहार नमस्कार हुआ। और जिन्हें अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है उनका जो भगवान को नमस्कार करना है उसको क्या कहेंगे? अभी इतना जानते फिर क्यों पूछते हैं? उनकी अपेक्षा नहीं, उनके बारे में से बताया हुआ, क्योंकि वो स्वयं की बात बता रहे हैं, चंद्रकंद आचार्य अपनी बात बता रहे हैं, अपने लिए नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए ना, करना फिर क्या वो? तो उसको जानना, अशुभ राग आ रहे उसको जानो, शुभ राग आ रहे उसको भी जानो, ये शुभ राग भला और अशुभ राग खोटा ऐसे अंदर से कहीं मान्यता टिकी हुई है, इसने ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी परिणाम आए तुम तो उसको ज्ञाता दृष्टा हो ना, ये शुभ राग मैं ला सकती हूँ और अशुभ राग नहीं लाना चाहिए, ये मान्यता ही भूल भरी है। ऐसे हताश कहाँ होना है? पहले तो हम नक्की करें ना कि हम ज्ञाता दृष्टा ही है, हमारे में जो जो परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि भाई बात ऐसी ना, आप में ज्ञान गुण है ना और चारित्र गुण भी है कि नहीं, तो फिर जो चारित्र में जो कुछ विवाह परिणमन चल रहा है वह भी आपके ज्ञान में आता है कि नहीं, बस जानो। उसको फेरफार करने की बदलने की क्यों चेष्टा करते हो? क्योंकि चारित्र गुण का परिणमन विभाव परिणमन क्या आपके हाथ में है? तो फिर आकुलित होने का कारण ही नहीं है। देखो अभी क्या होता है, ये जीव को टेंशन लेने की बहुत आदत आ गई है। फिर अभी भाई अभी क्या हो गया भावना बहन आपको? अरे मेरे को कोई टेंशन नहीं, इसी का टेंशन आ गया बोलते हैं। यानी अभी तक क्या हुआ था कि भाई लड़की की शादी नहीं हो रही थी, टेंशन था, तो अभी क्या हुआ, लड़की की शादी हो गई तो अभी क्या है, अभी टेंशन है। क्यों? वो कैसा वहां रहेगी? अरे तू जैसी रही थी वैसी वो भी रहेगी, उसमें क्या बड़ी बात है? तू भी तो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर गई थी ना, तो सर लेकिन टेंशन 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 ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखो पहले स्वयं के स्वरूप को समझना कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ना, अपने से पूछना, मेरे को उत्तर नहीं चाहिए, फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो जानने देखने के अलावा अन्य कुछ नहीं करता हूं, पर का परिणमन करना तो मेरे हाथ की बात है ही नहीं, मेरे मर्यादा के बाहर की बात है। अब उससे हटकर जब हम अपने राग द्वेष के परिणाम के शुभ या अशुभ परिणाम आते हैं, क्या उसका भी मैं करता हूं क्या? ऐसा अपने को ही समझाना है, अन्य कौन किसे समझा सकता है? बोलो तो ये बात मेरे लिए नहीं, वो मुनि के लिए, ऐसा समझकर हटना मत भाई। तो उनके भाई वो तो अपने जो अपनी दशा है उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं, और उस पर से हमें ऐसा पता लगना चाहिए कि नहीं हमें भी ऐसा ही आगे चलकर होना है, बस और क्या। लेकिन हमने तो स्वयं को स्त्री ही मान के रखा है, पुरुष ही मान के रखा है, तो फिर पर्याय में गया। वो बार बार भाई कितनी बार बोलना, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ और बोलता ही रहूंगा ऐसा मुझको लगता है कि यहाँ जब हम स्वाध्याय करते हैं तब मैं जीव हूं ऐसा पहला मतलब, अभी आगे तो गुरुदेव तो बता दे कि हूं परमात्मा छू एम पहला नक्की कर, तो वैसा मैं स्वयं जीव हूं और ये जो कुछ बात बता रहे वो मेरे लिए, अरे ये तो कुंदकुंद आचार्य के लिए, मेरे लिए ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि भावी निगम ने से आप भी तो परमात्मा होने वाली है क्या नहीं, क्यों घबराते हैं भाई? जब होना है सब होगा। अब उसके लिए कोई अपन जाती फिक्र करने से जल्दी थोड़ी आने वाला है, जो पर्याय जिस समय होगी वो होगी, इसके लिए हम स्वच्छंदता नहीं रखते हैं ना, इतनी बात ध्यान रखना। प्रयत्न अपने तो उसी ओर से चलने चाहिए, उसी दिशा में चलने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है। हाँ प्रणाम, फिर से पढ़ता हूँ तीसरी लाइन, वो पंचपरमेश इसकी भेंट होती है ना, उसके ऊपर का पैराग्राफ, उसमें ऊपर से तीसरी लाइन, जो कि नमस्कार में प्रणाम और वंदनोच्चार दोनों समाहित यानी इंक्लूडेड। हाँ क्या मतलब? हाँ हाँ, क्योंकि हमें ऐसी तकलीफ हो गई है कि हिंदी समझाने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम गुजराती नहीं जानते और आप मराठी नहीं जानते, सम्मिलित। चलो, होने से उसमें द्वैत कहा है, फिर भी तीव्र भक्ति भाव से स्व पर का भेद विलीन हो जाने की अपेक्षा से तो उसमें अद्वैत प्रवर्तता है, भगवान के प्रति विकल्प वर्तता है, इसलिए अद्वैत वर्तता है, ऐसा नहीं है। पर को नमस्कार करते हैं वह व्यवहार है, ऐसा स्वयं को भाव हुआ है। चिदानंद स्वभाव में एक रूप ढल जाना वह अभेद अद्वैत नमस्कार है, सभी मिलकर एक आत्मा है, ऐसा इसका अर्थ नहीं समझना, अपितु स्वभाव की एकता हुई वह अद्वैत नमस्कार है। मैं कुछ अन्य बताने वाला था और ये बात निकल गई, अभी फिर से आ गई यहाँ पर। अन्य मति ऐसा मानते हैं कि क्या भगवान से नहीं, नहीं नहीं, ये एक ज्योत है और उसमें हम छोटी छोटी ज्योत जाके उसमें विलीन हो जाए तो अद्वैत हो गया। ज्योत से ज्योत मिलाकर चलो, ऐसा कुछ है ना। और आगे क्या बोलते, प्रेम की गंगा बहाती चलो, यानी राग मत छोड़ो, ऐसा कह रहे हो। देखो कैसे कैसे लोग वो बहुत गाना गाते जोर जोर से और भक्ति करते हैं, और लोगों ने देखो कितना बढ़िया आदमी है। अभी बात तो ऐसी है कि वो कोई अपना स्वचतुष्टय खो सकता है, चाहे तब भी नहीं खो सकता, अपने स्वचतुष्टय के बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो फिर वो महाज्योत में छोटी ज्योत जाके कैसा विलीन हो जाए, तो वैसा जब हो जाएगा तब मोक्ष होता है, ऐसा कहते वो मानते। लेकिन यहाँ तो कह रही कि ऐसा हो ही गई नहीं, हो सकता नहीं। चलो इसलिए कह रहे हैं सभी मिलकर एक आत्मा है, ऐसा इसका अर्थ नहीं समझना, अपितु स्वभाव की एकता हुई, यानी स्वभाव की एकता हुई यानी अपना जैसा स्वभाव है वैसे पर्याय में प्रकट हो जाना, वही अद्वैत नमस्कार है। पंच परमेष्ठी से किसकी भेंट होती है, पंच परमेष्ठी किस आश्रम में रहते हैं, यह आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, इसकी प्रतीति यानी श्रद्धा ज्ञान और रमणता में पंच परमेष्ठी से भेंट होती है। क्या कह रहे देखो, अभी हमें किसी पर में लोग पूछते हैं ना हमको कि आपके यहाँ कोई अभी आपके मुनि साधु दिखते हैं क्या, दिखते हैं कहाँ है आप, ऐसा लोग पूछते हैं ना, किधर है आपके साथ, यहाँ क्या कहते हैं, पंच परमेष्ठी किस आश्रम में रहते हैं, तो हम आश्रम ढूंढने को जावे तो वहां कहीं हमें मिलेंगे, तो कहते ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि यह आत्मा, यह यानी कौन सा, स्वयं का, आप मेरे तरफ मत देखना, यह यानी अपना अपना आत्मा, तो यह आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, इसकी प्रतीति ज्ञान और रमणता जब होती है तब उसे पंच परमेष्ठी से भेंट होती है, क्योंकि मेरा जैसा स्वरूप है, मेरा जैसा स्वभाव है, ऐसे अनंत जो पंच परमेष्ठी है उनका भी ऐसा ही है, तो उनका बेटा हुए बिना नहीं रहेगा। कल में देखो क्या कहते हैं, यह बात न्याय से सुनना चाहिए, पर के लक्ष्य से किस प्रकार विपरीतता होती है,
और स्व लक्ष्य से किस प्रकार विपरीतता दूर होती है यह जानना चाहिए। पंच परमेश्वरी कहाँ मिलते हैं? आत्मा के विशुद्ध ज्ञान दर्शन में ही वे मिलते हैं। ऐसे अंतर के भान बिना पंच परमेश्वरी से भेंट नहीं होती। हम तो इतने बार समोसरण में होके आए हैं, कितनी बार? अनंत बार। तो आप कहते भेंट नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो आप ही जाना है। तो क्योंकि देखो अपने घर में छोटा बालक है, 4-6 महीने का, तो उसके हाथ में हमने जेब से निकाल के 1000 रुपए के नोट दी, तो क्या करेगा वो? मुंह में डालेगा, फाड़ेगा, फेंक देगा। तो उसको रुपये 1000 रुपए की नोट का कोई भाव भाषण हुआ तो उसका उसके साथ बेटा हुआ कि नहीं? अरे वो समझता ही नहीं है। ऐसे जैसा हम कुतुब मीनार देखते हैं, कौन सा तुम्हारा ताजमहल देखते हैं, वैसे हम समोसरण में जाके भगवान को देख गए। अगर उनको सही सही रूप से हमने पहचाना होगा तो आज अपनी ये हालत होती क्या? तो कहते हैं तुमने उसको मिला ही नहीं। क्या कह रहे? देखो आत्मा के विशुद्ध ज्ञान दर्शन में ही वे मिलते हैं। ऐसे अंतर के भान बिना, यानी अपने स्वरूप को पहचाने बिना, अपने स्वरूप का समझ हुए बिना पंच परमेश्वरी से भेंट नहीं होती। जो पूर्ण ज्ञाता दृष्टापना प्रकट करना चाहता है वह पद अंदर में भरा है। ऐसा श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे पंच परमेश्वरी की मोक्षार्थी को भेंट होती है। देखो ये तो कोई ऐसा नया आदमी सुनेगा तो समझेगा ये कुछ भी सिखा दे यहाँ। अंतर यानी अंतरंग में, हाँ जी, अपने स्वरूप में अंतरंग लेना उसको। अंतर यानी वो डिफरेंस, वो नहीं, वो अर्थ नहीं है। हम बोलते दोनों में क्या अंतर है, यानी क्या फर्क है, वो बात नहीं है यार। अंतर यानी ये क्या हो गया एक्चुअली, ये कुछ मूल गुजराती शब्द ऐसे ही रखे हैं इन्होंने। अब ये अद्वैत, ये वास्तव में उच्चारण में शायद ऐसा आया होगा। अब टेप तो हमने सुनी नहीं है, टेप से नहीं निकाला है, नहीं ये तो नोट्स निकाले उसके ऊपर। तो अद्वैत कहीं कहीं अद्वैत सही लिखा है और कहीं कहीं, ये देखो ये ऊपर से एक छठी लाइन है उसमें देखो, स्व सन्मुख लीनता रूप अद्वैत प्रवर्तता है और बहुत जगह अद्वैत अद्वैत हुआ है। अब वैसे भी ये अंतर जो है ना, ऐसे अंतर के भान बिना, ये अंतर शब्द भी विशेष रूप से गुजराती शब्द है। अंतर अपने स्वरूप को पहचाने बिना, भान बिना यानी उसका ज्ञान हुए बिना। तब आ गया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पाए हुए जीव चारित्र दशा प्राप्त करते हैं। यानी बेसिकली जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, यानी आत्मानुभव हुआ नहीं है, ऐसा जीव चारित्र दशा प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ चारित्र दशा जो है वह मुनियों की अपेक्षा से उनको चारित्र दशा है ऐसा कहेंगे, क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को जो चारित्र दशा है कौन सी होगी? स्वरूपाचरण चारित्र वो है उनको, क्योंकि उनके एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, इसलिए उनके उतने प्रमाण में तो निराकुलता है, आकुलता नष्ट हो गई है उतने प्रमाण में, इसलिए उनको भी अतीन्द्रिय आनंद आदि का भी वहाँ अनुभव है, वेदन है, सब है। लेकिन वो मुनियों की अपेक्षा से वो नगण्य है, मतलब इतना कोई उसकी मतलब तुलना नहीं हो सकती, इसलिए जो अंतरंग में जो स्थिरता जो मुनिराज को होती है उस अपेक्षा से वह उनको चारित्र नहीं है ऐसा कहने में आता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पाए हुए जीव चारित्र दशा प्राप्त करते हैं। जिनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है उनको चारित्र दशा प्राप्त नहीं होगी, ऐसा यहाँ सूचित करते हैं। अपने कहाँ पढ़ा था कि अमृतचंद्राचार्य जहाँ जहाँ अस्थि से कथन होगा वहाँ वहाँ नास्ति से भी कथन हमको दिखाते हैं। नियम धर्म में पढ़ा था ना, कल ही, हाँ कल ही पढ़ा था ना। हो अच्छा, आगे आज के इसमें आएगा कौन सा वाक्य आएगा, ये कल हो गया डॉक्टर साहब, कल हमने पढ़ा था। और पद्मप्रभा मलधारी देव दूसरी अपेक्षा से, वहाँ उन्होंने कहा कि कार्य नियम की बात बताते बताते वहाँ उन्होंने कारण नियम भी निकाला। तो चालू शास्त्र में उसकी बात नहीं है, कि ये उनकी विशेषता है कि जो गर्भित अर्थ है आया था ना, यहाँ हमें जो बता रहे हैं ना, क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पाए हुए जीव चारित्र दशा प्राप्त करते हैं, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया। तो इसका अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि जिन्हें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है वे चारित्र दशा प्रकट नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि चारित्र को ही धर्म कहा है और सम्यक दर्शन यह धर्म का मूल कहा है, यानी वो होगा तो चारित्र दशा प्रकट होगी। जैसे बीज के बिना वृक्ष बनता नहीं है ख्याल में, वैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र रूपी वृक्ष उगेगा ही नहीं, ऐसा कहें। देखो बाह्य से चार आश्रम कहे जाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इनमें संन्यास अर्थात चारित्र आश्रम वह कहाँ मिलता है, स्वाभाविक दर्शन ज्ञान लक्षण वाले आश्रम में चारित्र मिलता है, यानी अपने स्वरूप में लीनता करेंगे तो वहां चारित्र दशा मिलेगी, ऐसा कह रहे हैं। आत्म तत्व में पुण्य पाप नहीं है, जो दया दान आदि का शुभराग उठता है वह पुण्य तत्व है, आत्म तत्व नहीं है। और हमने क्या माना, ये आत्म तत्व या पुण्य तत्व कहा, इसको हम आश्रम भी कह सकते हैं। सात तत्वों में आश्रम तत्व है ना, तो वह जो आश्रम तत्व है उसी को इस जीव ने आत्म तत्व यानी जीव तत्व मान लिया। तो कैसे हैं, हिंसा झूठ चोरी आदि के अशुभ भाव है वे भी जीव तत्व नहीं है, शुभाशुभ राग निकल जाता है इसलिए वह मूल तत्व नहीं है। सुशीला बेन आपकी बात आ गई ना, अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों ही जीव तत्व में नहीं है। तो फिर जो अपना नहीं उसके बारे में चिंता क्यों करना, आता है आने दो, जानो बस, उसको हटाने की लाने की बाजू करने की कोई आकुलता मत रखो, जानो बस। जैसे शक्कर मिठास और सफेदी का पिंड है वैसे ही आत्मा ज्ञाता दृष्टा पूर्ण स्वभाव का पिंड है, शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करे वह आश्रम शरण रूप है। चारित्र दशा प्रवरण, चारित्र दशा सम्यक दर्शन ज्ञान बिना नहीं होती, मात्र नग्न दिगंबर होने से चारित्र नहीं होता। एक श्लोक बताते, बुद्धि बिना ना बाबा थया भवसागर मां डूबी, ये क्या जुआ तो क्या हो गया, मुआ मुआ चाहिए जू चाहिए, यहाँ जू लिखा है भाई। अच्छा आपको सही मालूम है, हाँ तो बाबा थया तो मुआ चाहिए वो क्या बुआ कुछ समझ में नहीं आता मुआ जो है ना हाँ मुआ यानी मरा हाँ डूब मरा हाँ बाबा से सुनो सुनो वो ब है ना उसकी जगह वह चाहिए हाँ बाबा हाँ यानी उन्होंने दाढ़ी बढ़ाया ऐसा बोलते हैं व देखो बुद्धि विना ना बावा थया यानी बावा यानी साधु वो अभी आज देखा होगा ना 2 बजे क्या ते बुद्धि विना ना बावा थया अने बहुसागर मां डूबी मुआ अभी समझ में आया कि नहीं यानी कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं और ले लिया मुनि दिशा दक्ष क्या मुनि दशा तो क्या हुआ बुद्धि विना ना बावा थया अने भव सागर मां डूबी मुआ बाह्य वेश में चारित्र नहीं है क्या कहा कि ये मुनि दशा नग्न दशा लेना यह भी बाह्य वेश है हम तो समझते कि आज क्या हमने सफारी पहनी तो आज क्या हमने कुर्ता पैजामा पहना ये वेश बदली कर दिया ये नहीं ये नग्नपना धारण करना बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के वह भी और खुद को मानना और दूसरों से मनवाना कि मैं मुनि हूं तो वो भी बाह्य द्वेष उसने धारण किया देखो क्या कहते हैं वेश 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 क्या बोलते हैं आपकी भाषा में पोशाक हाँ वो आजकल निकला ना क्या क्या ड्रेस ड्रेस आज देवेंद्र भाई फॉर्म में बहुत अच्छा है क्या कहा देखो बाह्य वेश में चारित्र नहीं है पंच परमेश कब प्राप्त होते हैं आत्मा एक समय में पूर्ण ज्ञाता दृष्टा है उसकी प्रतीति और ज्ञान लक्षण वाला सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें चारित्र होता है अन्य को चारित्र का कोई प्रकार नहीं होता धर्म वस्तु का स्वभाव है आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है ऐसे आत्मा का सम्यक दर्शन और ज्ञान आश्रम का लक्षण है यानी आश्रम जो कहा ना वो आश्रम का मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जहां है उसको आश्रम कहा है ऐसे आश्रम में एकाग्रता रूप गमन करे तो चारित्र दशा प्रकट होती है 28 मूल गुणों का पालन करे नग्न मुनि का वेश धारण करे तो भी इतने मात्र से चारित्र नहीं होता जैसे भूमि के बिना झाड़ नहीं उगता वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता चारित्र अर्थात चरना चरना यानी रममान हो जाना स्थिर हो जाना कहां देह की क्रिया में पुण्य पाप में नहीं जैसे जहां घास होती है वहां पशुओं को चरने ले जाते हैं किंतु रेती के ढेर में नहीं वैसे ही आत्मा पूर्ण ज्ञाता दृष्टा है उसमें श्रद्धा ज्ञान व एकाग्रता रूप आचरण से वह पुष्ट होता है वह यानी कौन आत्मा हाँ। और हम क्या खाते हैं घास बाघ खाते हैं क्या बादाम खाते हैं क्या कहा देखो उससे वह एकाग्रता रूप आचरण से वह पुष्ट होता है शरीर की क्रिया और शुभराग से आत्मा की दशा पुष्ट नहीं होती किंतु सूख जाती है पुण्य पाप इसका स्वरूप नहीं है ऐसे ज्ञानानंद में स्वभाव की प्रतीति करे और अंतर में झुके तो अतीन्द्रिय सुख शांति का माल प्राप्त होता है और ऐसे अंतर में रमणता होने से ही चारित्र होता है
टाइम हो गया बराबर
आज घड़ी में रुके
जावाणी के ज्ञान ते सुधे लो कालो तो वाणी मस्तकनमो सदा देतो
सरला मिल
बोलो जिनवाणी माता की जय।